ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप नेता गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनता की समस्याओं का समाधान होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद प्रचार तेज हुआ। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजनिवास में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी के 5 अन्य नेता गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन तथा मुकेश अहलावत ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री आतिशी ने इस नई जिम्मेदारी के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद त्याग कर नैतिकता की मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार दिल्लीवासियों के लिए कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अब हम बीते कुछ समय से दिल्ली में रुके पड़े जन सरोकार के काम वापस शुरू करेंगे।
मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की नई सरकार को डम सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नाम मात्र की सरकार है और ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी।
ये तो डम्मी सरकार है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को पहले पिछले 8 महीने का हिसाब लेना है और अगले 3 महीने भी दिल्ली में जो सरकार होगी वो सिर्फ रिमोट से चलेगी, उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा, ना अपना विवेक होगा, ना अपना कोई दृष्टिकोण होगा।
आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। इससे पहले इसी सप्ताह अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को नए दायित्व के लिए बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने कहा कि नई सरकार के गठन से केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, सरकार का चरित्र नहीं बदला। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पास शिक्षा, वित्त, विद्युत समेत 13 विभाग रखे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन सहित 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री गोपाल राय को 3 और कैलाश गहलोत को 5 विभाग दिए गए हैं। वहीं मंत्री इमरान हुसैन को 2 और मुकेश अहलावत को 5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे से संबंधित ये प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली भाजपा ने आज से प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत की है। पार्टी के अनुसार आज से हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली भाजपा के सांसद लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज से शुरू हुआ जनता दरबार भाजपा की कार्यशैली का भाग है। उन्होंने बताया कि जनसेवा और जनता की समस्या का समाधान करवाना ही पार्टी की पहली प्राथमिकता है।
जो भी कार्यकर्ता दिल्ली की जनता का कोई भी नुमाइंदा यहाँ की समस्या लेकर आता है तो संबंधित विभाग से बात करना, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना तो कैसे हम जनता के लोगों की मदद कर सके उस विषय में अपना योगदान देना। तो एक तरह से जो हम सेवा और समर्पण की बात करते हैं उसका सही मायनों में ये एक वो रूप है जो दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा।
हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जनसभाएं कर लोगों से समर्थन मांगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज लाडवा की शिवाला रामकुंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ की और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक ही सीमित है, वहां मुख्यमंत्री के लिए चेहरा तय नहीं है, जबकि भाजपा में योग्यता के आधार पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ने केवल 56 दिनों के कार्यकाल में लोकहित के लिए बेहतरीन काम किया। नायब सिंह सैनी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की अपील की है। पंचकूला से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन ने जिले में कई चुनावी सभाएं की और लोगों से वोट देने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के पुत्र कांग्रेस नेता मनीष बंसल ने पंचकूला के औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों उद्योगपतियों के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया। चंद्रमोहन ने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में दिशा निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कहा है। इसका लक्ष्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% स्कूली छात्र तंबाकू का सेवन करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित गोकुलपुरी, खजूरी, भजनपुरा, मुस्तफाबाद और करावल नगर क्षेत्र के नालों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान बदहाल व्यवस्था देखने को मिली। उन्होंने कहा कि गोकुलपुरी इलाके के 200 फीट नाले से गाद न निकाले जाने के कारण वे अब 20 से 25 फीट का रह गया है। श्री सक्सेना ने कहा कि इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं और गड्ढों से भरी हुई हैं और जगह जगह पर कूड़े के ढेर जमा हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हर वर्ष आज के दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्जाइमर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़े नकारात्मक विचारों को दूर करना है। इस साल इस दिवस की विषय वस्तु डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय है। अल्जाइमर रोग में व्यक्ति का मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से याददाश्त कमजोर हो जाती है और सोच तथा व्यवहार भी प्रभावित होता है। इस बीमारी के लक्षण गंभीर नहीं होते और आमतौर पर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। एम्स दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में अल्जाइमर रोग के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डाला, जिनमें याददाश्त कमजोर होना, सोचने में कठिनाई, तर्क वितर्क करने में समस्या, व्यवहार में बदलाव और अवसाद शामिल हैं।
अल्जाइमर की जो बीमारी है वो वृद्धावस्था की बीमारी है। उसमें 55-60 ईयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा भूलना, जो हाल ही में हुआ है आज कल परसों में वो चीजें भूलना, पुरानी याददाश्त बची रहती है। इसके अलावा रास्ते भूलना, रास्तों में गुम जाना, हिसाब किताब पढ़ना लिखना समझना, ये सब की परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ थोड़ा व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक्टिविटीज हैं, जैसे अपनी जो अपीयरेंस है और अपनी देखभाल है, पर्सनल हाइजीन है, उससे भी असर पड़ता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद से विश्वविद्यालय में प्रचार तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार छात्रों के बीच पहुंचकर अपने मुद्दों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ ही चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। इस चुनावी मौसम में कैंपस गुलजार है और यहां की रौनक देखते ही बनती है। कैंटीन, चाय की दुकान, हॉस्टल, हर तरफ विद्यार्थियों में एक अलग उत्साह देखा जा सकता है। छात्रों के बीच चर्चा का मुख्य विषय डूसू चुनाव बने हुए हैं। अलग अलग छात्र दलों के उम्मीदवारों के साथ साथ स्वतंत्र उम्मीदवार भी इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों, विभागों और संकायों में पढ़ रहे छात्रों तक पहुंचकर उन्हें अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किन उम्मीदवारों के हाथ छात्र संघ के चार सीटों की चाबी लगती है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने बच्चों में स्वच्छता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का विषय स्वच्छता को जीवन का तरीका बनाना था और इसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने भारतीय खाद्य निगम के साथ आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत शहर के बंगाली मार्केट इलाके में स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के संदेश को बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। परिषद के अनुसार ये आयोजन सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के उनके प्रयास का हिस्सा है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में आज तड़के एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 3:20 पर इस घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद विभाग ने आग बुझाने के लिए 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी। दमकल विभाग ने बताया कि उन्होंने सुबह लगभग 7:30 आग पर काबू पा लिया था और अभी घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस के अनुसार कुर्सी कारखाने में लगी आग में फंसे 42 लोगों को पुलिस की टीम ने आसपास की इमारतों के शहर तोड़कर बाहर निकाला। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव आवास एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ वन्य जीव आवास विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। इस योजना में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्य जीव आवास विकास को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से 50,00,000 रोजगार दिवस का सृजन होगा। इस योजना से कुल 55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र तथा उनके क्षेत्र लाभान्वित होंगे। ये योजना बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता को प्रकट करते हुए सुनिश्चित करती है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी साथ साथ आगे बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाये रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप नेता गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरूआत की, जिसमें प्रत्येक शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनता की समस्याओं का होगा समाधान। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद प्रचार तेज हुआ और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।